తత్రైవ గంగా యమునా చ వేణీ గోదావరి సింధు సరస్వతీ చ సర్వాణి తీర్థాని వసంతి తత్ర యత్రాచ్యుతోదార కథా ప్రసంగ నిరంజనం నిష్ప్రతిభం నిరీహం నిరాశ్రయం నిష్కలమ ప్రపంచం నిత్యం ధ్రువం నిర్విషయ స్వరూపం సనాతన రామమహం భజామి. ఆనందమానందకరం ప్రసన్నం జ్ఞానస్వరూపం నిజబోధరూపం యోగీంద్రమీడం భవరోగవేద్యం శ్రీమద్గురుం నిత్యమహం నమామి. తత్రైకాయేన వాచా మనుషేంద్రియవా బుద్ధ్యాత్మనా వానుసృతస్వభావాత్ కరోతి యత్ యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయేత. నారాయణాయేతి సమర్పయామి. బోలే భక్తవత్సల భగవాన్ కీ. ఆనంద కంద భగవాన్ కీ
జయ.
శ్రీ రామదాస్ జీ మహారాజ్ కీ
జయ.
శ్రీ దయాళదాస్ జీ మహారాజ్
కీ జయ.
శ్రీ రామ్ గురుదేవ్ జీ మహారాజ్
కీ జయ.
అనంత కోట సంత మహాత్మా కీ
జయ.
అప్నే అప్నే ఇష్ట గురుదేవ కీ
జయ.
సత్య సనాతన
ధర్మ కీ జయ.
భక్త భక్తి భగవంత గురు చతుర్నామ వపు ఏక్ ఇన్కే పద వందన కియే నాశయ విఘ్న యనే. ఏక ద్వైజరవ అంతయే ఛద్దామ నామా సంతయే జదూపదమిత్రౌ తాకరే గురు విద్యా శిక్షా సాధరే ఋషి నామతా సందీపనం పురి అంతికామజవే భనం దుజబాలహేత విచారహి త్రియకయో దుఃఖపతి నారహి శోచలయో ద్వారా మత్త గయే మనకంబ జీర్ణ వసనే తన రోరపూర దిఖావహి ప్రీకృష్ణ అంతర చావహి ప్రతిహార పౌర సమాజహి ముఖ కహన కంపన లాజహి ముఖ కహన కంపన లాజహి జాదూపత బ్రాజే తహా చపన క్రోడ శిరమోర్ ఋషభృత హితకారి జనా ఆవత దూజీపో. అనంత కోటి బ్రహ్మాండ నాయక పరమపిత పరమాత్మా ఏం పరమ ఆరాధ్య ఇష్ట గురుదేవ్ కే చరణం మే సాదర్ సాష్టాం దండవత్ ప్రణామ్ కల్తే హుయే. అనంత కోటి సంత మహాపురుషో కే చరణం మే సాదర్ వందన కల్తే హుయే. ఆబాల వృద్ధ సమస్త భాయీ బహనో కా యథాయోగ్య సమ్మాన కల్తే హుయే. అప్నే సమయ కే సదుపయోగ కీ దృష్టి సే సత్పురుషో కీ వాణీ కే మాధ్యమ సే సత్పురుషో కీ కృపా ప్రసాదీ స్వరూప్ జో భావ హృదయ మే ఆయే ఆతే హే ఉన్హే ప్రకట్ కర్నే కీ చేష్టా కీ జా రహీ హే. మహాపురుషో కే ప్రసాదీ రూప ఇన్ వచనో కో హృదయ మే సున్ కర్కే ధారణ కర్తే హువే ఆప్ ఔర్ హమ్ సబ్ అప్నే జీవన్ కో మంగళమయ బనాయే యహీ సాదర్ వినంతి హే. आज का प्रसंग अभी जो आप लोगों के सामने ठाकुर जी के यहां पदार्पण का संपन्न हुआ, यमुना महारानी के भी स्वागत के साथ में यहां समागम यहां आगमन का जो महोत्सव भी आपने देखा, ऐसे ही सज्जनों हमारे अपने हृदय रूपी सरोवर में परमात्मा का सदैव पदार्पण करते रहना चाहिए, सदैव हृदय में उन्हें बधा करके विराजमान करते रहना चाहिए, सदैव हृदय में उनके दर्शन करने की लालसा लगी रहनी चाहिए। जितनी उत्कंठ लालसा होगी उतना ही हमें अधिक आनंद आएगा। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उस गर्मी में ठंडे पदार्थ इतने प्यारे लगेंगे। वही पदार्थ है पर ठंडी में प्यारे नहीं लगते, पर गर्मी में वही प्यारे लगते हैं। जैसी जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना कूलर अच्छा लगेगा, उतना ही एसी अच्छा लगेगा, पर वही सर्दी में अगर चलाया जाए तो क्या दशा होगी। हमारे हृदय में उत्कट इच्छा प्रभु मिलन की, प्रभु दर्शन की होगी, तभी सज्जनों हमें अपार आनंद की अनुभूति प्रभु की कृपा से होगी, हमारे तरफ से नहीं। वे कृपा रूप आनंद करने वाले ही हैं। इस प्रकार आज का प्रसंग है, इसी प्रकार आनंद बढ़ाने वाला, आनंद महोत्सव जागृत करने वाला भक्त सुदामा जी का है आ रहा है। यहां जैसे ठाकुर जी का आगमन हुआ तो आज ठाकुर जी को द्वारका में भी भक्त का मिलन करा देना चाहिए, भक्त को वहां द्वारका पहुंचा देना चाहिए। भगवान आके यहां दर्शन देवे और भक्त जाके भगवान को द्वारका में दर्शन देवे, जहां भगवान को अभी भक्त की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण जब तक अपने गोकुल में रहे तो सुदामा नामक साथी उनके साथ में था, और जब तक वे मथुरा में रहे तो सुदामा नाम का माली उनको मिल गया, पर जब से वे द्वारका में आए तो उनके पास में सुदामा नाम का कोई नहीं था मित्र। उन्हें सुदामा के बिना भगवान से राह नहीं जाता है, इसलिए सुदामा की उनको बड़ी भारी आवश्यकता है। तो अब जब बाल्यकाल में जिस समय संदीपनी मुनि के पास पढ़ाई करने के लिए भगवान बाल्यकाल में गए थे, 12 साल की अवस्था में कंस के वध के बाद उज्जैन नगरी में जहां विराजमान है संदीपनी मुनि, वहां भगवान श्री कृष्ण पढ़ाई करने के लिए पधारे। संदीपनी मुनि जो काशी के महात्मा जी थे उनके शिष्य थे, परंतु वे उज्जैन में रहा करते थे। उनको गुरुजी ने कहा कि तुम्हें यही भगवान के दर्शन होंगे, तो वो वहीं रह गए, काशी जी छोड़ करके उज्जैन में ही रह गए। भगवान कृष्ण जब कंस का वध कर चुके तो उस समय में ही विद्या अध्ययन करने का समय, जो उपनयन संस्कार का समय होता है, तो वे पढ़ाई करने के विचार से अपने मथुरा से रवाना हो गए। मथुरा से रवाना हुए, रथ से आप चले जा रहे थे, लेकिन रथ से रवाना हुए तो किसी से कहा नहीं कि मैं द्वारिका में उज्जैन जा रहा हूं, क्योंकि राजा लोग अपना, ये आजकल जो मिनिस्टर लोग, तो सबसे पहले अपना वो बता देते हैं कि मैं कौन से मिनट में कौन से कहां रहूंगा, ये सारी अपनी स्थिति बता देते हैं, स्पष्ट करते हैं। लेकिन योग्य जो शासक होते हैं वे अपना वस्तु स्थिति वर्णन नहीं करते, बताते नहीं कौन सी जगह होंगी, इसलिए कि पीछे कोई भाई सत्संग की बात भी तो खाली पेट चौकी को लागे नहीं, ओ भूखा भजन हो गोपाला, आ ले ले थारे कंठीन माला, भूखे से भजन होता नहीं है। ऐसे सुदामा जी जब बैठे उदास मन थे ज्ञान चर्चा की बातों बातों में, एक दिन सुदामा जी ने अपनी जो पत्नी जिसका नाम सुशीला बताया जाता है, उस ब्राह्मणी को बातों बातों में बाल्यकाल में कृष्ण के साथ में हुई मित्रता की बात बताने लगे कि मैं बाल्यकाल में था, उस समय मेरे एक मित्र भगवान कृष्ण जी ने कहते हैं, अभी वो वर्तमान में द्वारका के राजा हैं, वो उन्होंने मेरी मित्रता की थी, मैं उनका मित्र था। तो बात सुनकर के सुदामा जी को पत्नी ने कहा, सुशीला ने कहा, ए पतिदेव, आपके यदि ऐसे मित्र हैं तो कभी मित्र के पास में आपको जाना चाहिए। बात सुनकर के सुदामा जी ने जवाब दिया कि नहीं नहीं गजब करिए, तो मुझे लालच सिखारिये, तो मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण को सदा संतोष होना चाहिए। जिसका संतोष नहीं होता है ऐसा ब्राह्मण होता है उसका पतन हो जाया करता है। भजन बिगाड़ी कामिणी, सभा बिगाड़ी कूर, भगत बिगाड़ी लालची, केसर मिल गए दूर। मैं तो गरीबी में भगवान का भजन करूं यही भगवान को पसंद है, इसलिए मुझे लालच में मत फंसा, मैं वो उसके पास में क्यों जाऊं। अरे औरत होती है वो भगत भजन में कोई न कोई विघ्न पैदा किए बिना नहीं रहती। दुष्ट आदमी कोई सभा में आता है तो सभा में खलबली बचा देता है, खलबली कुछ न कुछ गड़बड़ी पैदा करता ही है। और इसी प्रकार लालची है, लालच है वो भक्ति को बिगाड़ देता है। ये सब के सब काम ऐसे है जैसे कस्तूरी और केसर बड़ी कीमती चीज होती है, लेकिन इनको कोई लेकर के मिट्टी में मिला दे जैसा काम है, बल्कि उत्तम काम है, परंतु लालच के कारण से मैं अपने ब्राह्मण पणे को कभी कलंकित नहीं होने देता। मैं रुपए का लोभ लेकर के, संपत्ति का लोभ लेकर के मेरे मित्र के पास में जाऊं, ये लालच इससे बढ़कर के और क्या होगा। उस ब्राह्मण को ऐसी बात मत मिता सिखाओ। देखो मित्र की तो केवल सुशीला ने कहा, मैं और किसी प्रकार लालच के लिए नहीं कहती हूं, मैं तो ये चाहती हूं कि आपने कहा मेरा मित्र है तो मित्र को तो मित्र के पास में निसंकोच जाना आना चाहिए। तब सुदामा जी ने जवाब दिया, कृपा मिंत की चाहिए सुनो सयानी बाम, कृपा दृष्टि सब जाए मिटी जांच लिए जब दाम। देखो मित्र की तो केवल कृपा दृष्टि चाहिए, केवल रामा समा चाहिए। यदि मित्र के पास में जाकर के आपने पैसों की याचना कर ली, मुझे कुछ पैसा चाहिए, तो मित्रता उसी समय खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना, पैसों से प्रेम तत्काल नष्ट हो जाता है दुनिया का, क्योंकि ऐसे ही काम है पैसे का। इसलिए कृपा दृष्टि सब जाए मिटी जांच लिए जब, रुपए पैसे मांगने के कारण से मैं उनकी मित्रता को क्यों नष्ट करूं। मित्र तो है ही, जिसने पैसे मांग लिए मित्रता ही टूट जाएगी। आज नहीं मिले तो क्या, लेकिन मित्र तो मेरा कृष्ण है ना, इसलिए मैं नहीं जाता हूं, मना करते हैं दोबारा भी उन्होंने सुनने की। अब फिर भी उसने अर्थ किया कि आपको भगवान के सम्मुख जाना ही चाहिए, हमारा जीवन कैसा भी है भगवान के सम्मुख रखे बिना उनको क्या पता। मैं नहीं कहती कि आप जाकर के भगवान से मांग कीजिए, कृष्ण से मांग कीजिए, मित्र से मांग कीजिए, नहीं मांगना नहीं मांगना। लेकिन जो समझदार होते हैं वो अपना आप स्वरूप देख करके पहचान जाते हैं। अरे कोई कहते हैं ना, लिपापा देख करके अंदर क्या चीज लिखी है पहले पता पड़ जाता है। ब्यावरा कार्ड आवेदन पतो पड़े को नहीं, मायने कुंको पत्री है, मायने कर जीवन वा तो बुलाया है, इसी प्रकार पता चल जाता है। ऐसे आप उनके सम्मुख हो जाइए। सुना है कि प्रभु के सम्मुख होने पर मनुष्य के जो पाप हैं, जिनके कारण से दुख पैदा होता है, वो सब पाप नष्ट हो जाया करते हैं। तो आप जाओ और उनके सम्मुख हो जाओ, केवल ऐसी मेरी आपसे बार बार विनती है, और मैं कुछ नहीं कहती। प्रभु के सम्मुख हो जाना चाहिए बस। आप इतने वर्षों में कभी उनके सम्मुख हुए नहीं, फिर आपको दुख मिटाना चाहते हो तो कैसे मिटेगा, वो दुख बढ़ने का ही है। प्रभु के सम्मुख हुए बिना कभी किसी का दुख मिटा नहीं है, मिटेगा नहीं। आप उनके सम्मुख होकर के देखिए तो सही, रोज की रोज, रोज की रोज, उठ सार एक ही एक, एक ही एक पंच करे, एक ही एक बात, जाओ द्वारिका, जाओ द्वारिका, जाओ द्वारिका। बातें सुन सुन करके ब्राह्मण हैरान हो गया। अब यही रात दिन रहना, यही रात दिन टिकट किट करे तो क्या करे, इससे अच्छा है कुछ दिन के लिए यहां से रवाना हो जाऊं। इसलिए वो कहने लगा है ब्राह्मण देवता पत्नी से, द्वारिका जाओ हो जो, द्वारिका जाओ हो जो, आटो जा मैं यही झक तेरे, जो न कहो करी हो तो बड़ो दुख जय हो कहा अपनी गति हेरे। अरे तू रोज रोज कह रही है द्वारिका जा, द्वारिका जा, तेरे मेरे तो रहने का कोई ठोर ठिकाना नहीं, मैं कैसे रहूं। अब बात सुन सुन करके परेशान हो गया। अरे तुझे पता नहीं राज दरबार में कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे जाना चाहिए। द्वार खड़े प्रभु के चरिया ता भूपति जानन पावत नीरे। राजा महाराजा लोगों के दरवाजे पर बड़े बड़े लठ लेकर के पहरेदार खड़े रहते हैं। राजा महाराजा लोगों को भी अंदर प्रवेश नहीं मिलता बिना इजाजत के। मेरे जैसा गरीब ब्राह्मण वहां जाएगा तो कौन उसे अंदर जाने देगा। और मैं ये कहूंगा कि मेरा मित्र है कृष्ण तो कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा। लेकिन अब तेरे सामने भी ऐसी बात तो समझती है नहीं, क्या करूं। अगर मान लो जाऊं भी सही, किसी प्रकार वो कृपा कर भी दे, लेकिन तुझे पता होना चाहिए मित्र के पास में जावे तो कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। अरे पांच सुपारी भी ला ले जाके भेंट कर दूं तो मित्र तराजी हो जाएगा, पर पांच सुपारी की बात गई दूर, चार चवल भी हमारे घर में नहीं मिलेंगे तिलक पर लगाने के लिए लायक भी, तब फिर मैं क्या मुंह लेकर के अपने मित्र के पास में जाऊं। बोल, पांच सुपारी तो देख बिचारे के बेटे के चरण चाऊर मेरे। इस प्रकार जब सुदामा जी का अब तो मान जाएगी रीति समझाने के, जब कोई चीज ही नहीं है तो भेंट देना चाहिए। अब बात सुनी तो मनुस्मृति का दृष्टांत दिया, देवो राजा गुरुर भार्या वैद्यो नक्षत्र पाठक रिक्त पाणिन गंतव्य तत्र कार्यम न सिद्धति। एक तो देवता के साथ ठाकुर जी के पास में मंदिर में जाओ तब, एक किसी राजा के पास जाओ तब, एक गुरु जी के पास में जाओ, वैद्य जी के पास में जाओ, नार दिखानी वे तो ध्यान रखना, या ज्योतिष जी के पास में जन्म पत्र दिखानी वे तो खाली जेब नहीं जानो, खाली हाथ नहीं जानो, काम सफल नहीं होगा। जेब में नोट देखेंगे तो अच्छी बता देंगे, नहीं तो कदा देखते तेरे शनि की दशा है, तेरे मंगल की दशा है, और कोई न कोई गड़बड़ी बता देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, खर्चा करा देंगे ज्यादा, इससे थोड़ी पेट उनको दे देनी अच्छी है, ज्यादा फालतू खर्चा तो नहीं करावे। इस पर अगर खाली हाथ जाने से कार्य सफल नहीं होता, इनके पास कुछ न कुछ लेके ही जाना चाहिए। मैं अब ले जा क्या सकता हूं, तुझे पता है यहां पर हमारे घर में कौन सी सामग्री है जो मैं मित्र को ले जाके देऊं। बात सुनी तो सुशीला ने जवाब दिया, अगर जाने के लिए तैयार हो तो सही, आप तैयार हो जाओगे तो चावल का इंतजाम मैं जैसे तैसे मांग तांग करके भी कर दूंगी, लेकिन आप तैयार हो जाओ। अच्छा बाबा जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। अब सुशीला ब्राह्मणी अपने पड़ोसियों के पास में गई, उनसे जाकर के कहा कुछ भाई मैंने एक पाव चावल चीजिए, और एक पाव चावल। अब एक जन एक पाव चावल दे नहीं सके, एक मुट्ठी तो मैं दे दे भाई, थने ब्राह्मणी है कोई बात को नहीं, एक घर से एक मुट्ठी चावल, चावल भी कौन सा चिवड़ा चिवड़ा कूटियोड़ा चावल आवे जाको भाई आप बनाए करो दी, कूटियोड़ा चावल जका ने क्या करे चिवड़ो, उन्हें बनावे पोहा, पोहा बनता ने वो चावल। अब एक घर से एक भाई ने एक मुट्ठी दिया, दूसरे घर से दूसरे भाई ने एक मुट्ठी दिया, तीसरे तीसरे चार घरों से चार मुट्ठी चावल मिलकर के एक पाव बन गया। उसको संतोष खबर इससे ज्यादा नहीं चाहिए, एक पाव चावल हो गया, और चार घर का आया तो चार रंग बिरंगा चावल, किसी के घर में कैसा रंग, किसी के घर में कैसा रंग, ऐसे रंग बिरंगा मिक्सचर किए हुए जैसे हेड़ भेड़ होता है ना, नमकीन खाते हो उसी प्रकार का मिक्सचर बन गया चावल का भी। अब वो चावल पाव पर लेके आई, अब वो चावल देने के लिए टिप्पण तो घर में है नहीं, काय में देवे, थैली भी कोई है नहीं, अपना फटा पुराना जो ओढ़ना था पूरी तरह फटा हुआ पड़ा हुआ है, उस ओढ़ने को उठाया, उसको दोहरा किया, दोहरे को फिर दोहरा किया, तब कहीं जाकर वो चिवड़ा अंदर रहने लायक वो पड़ा, नहीं तो बारियां बारम्बार दिख रही थी बारी निकलने के लिए। बताओ ऐसे एक पाव चावल उस कपड़े की पोटली में बांध दिया और बांध करके अपने पतिदेव को दे दिया कि महाराज आप अब ये चावल मेरी तरफ से ले जाना और अपने मित्र को कह देना ये भाभी ने सौगात भेजी है, जैसी भी है जैसी आप स्वीकार करो महाराज। जैसी है जैसी बस, और कुछ नहीं, अच्छी बुरी कुछ नहीं, जैसी है जैसे आपके अर्पण है आप स्वीकार करो। इस प्रकार वो चावल उन्हें दे दिए। सुदामा जी ने चावल की पोटली कांक में आत में उठा ली, लकड़ी ले ली, और अब जैसे जूते फटे पुराने थे उनको पैर लिया और वहां से अपने सुदामापुरी से रवाना हो गए हैं द्वारका के लिए। भगवान को बड़ा आनंद हुआ कि मेरे लिए यहाँ जिस बात की कमी थी उस बात की पूर्ति करने के लिए मेरा प्यारा मित्र सुदामा आज यहाँ पर आ रहा है। अपार हर्ष हो रहा है, अपार आनंद हो रहा है। आपने वहां पर महल में पहले से ही मित्र के स्वागत के लिए नाना प्रकार की तैयारी करवा दी, बताए किसी से कुछ नहीं। आनंद उत्सव महोत्सव मनाया जाए, स्वागत तोर द्वार लगाया जाए, ये किया जाए, वो बंदनवार लगाए गए, फूल बिछाए गए, इत्र छिड़काया गया, ऐसे खूब वहां द्वारिका में सजावट। भगवान से पूछा क्या हो रहा है, भाई आप कर लो, पूछो मत किस लिए है, कारण नहीं मालूम करना है, आप कर लो बस। इस प्रकार उन लोगों ने आदेश मिला तो सब तैयारी कर ली, पूरे नगर में तैयारी है, क्योंकि भगवान विचार करते हैं मेरा मित्र कभी कबार ही आता, रोज रोज तो आने वाला है नहीं, उसके स्वागत के लिए जितनी भी की जाए तैयारी इतनी कम है। ऐसे अब सुदामा जी जब वहां से रवाना हुए लकड़ी लेकर के, धूप का समय था, जो लेके धीरे 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 आगे बढ़े। अब आगे बढ़े तो पैर पुराने थे, घोड़े थक गए, किसी पेड़ के नीचे धूप में थोड़ी देर बैठ करके सुस्ताए, फिर थोड़ी देर आगे चले, घंटा भर चले होंगे नहीं चले, कोई पेड़ की छाया देखी और उसके नीचे आप हाथ का तकिया लगा करके सो गए, हाथ का तकिया लगा सो गए, आराम किया। अब थके हुए थे इसलिए चटपट उनको वहां पर नींद आ गई, और नींद आए तो ऐसी आए तो पांची रात भर नींद खुली जो नहीं, एक नींद में रात, दिन और रात दोनों बीत गए उनके, क्यों भगवान ने कृपा की कि इनको आराम करने दो, अब मेरे सम्मुख आ गया इसलिए जब रवाना हो गया तो इसको भी पैदल चलाना नहीं है, मेरे सम्मुख आ रहा है तो उसको मैं कितना जल्दी उठा के चलना हूं, अगर वो पैदल पैदल चलेगा तो कितने ही दिन लगेंगे इसको यहां पर पहुंचने में, और इतने दिन मैं इसकी उत्कंठा में प्रतीक्षा कैसे करूं। इसलिए भगवान ने अपने गर्व से कहा, जो गरुड़ जी ने कहा भगवान क्या आज्ञा है, जाओ उस मेरे मित्र को जल्दी से जल्दी द्वारका में पहुंचा दो, सुदामा मित्र को जल्दी से जल्दी द्वारका में पहुंचा दो, देरी नहीं होनी चाहिए, जो हुक्म सा। गरुड़ जी मन की गति से चलने वाले, बताओ मन की गति से भी तेज गति है, मन की गति, मन अभी यहां बैठे बैठे बॉम्बे में गए तो बॉम्बे पहुंच जाएगा मन आपका, कोई देरी नहीं लगेगी, इससे भी तेज गति है गरुड़ जी की। गरुड़ जी तो ज्यों ही वहां गए चटपट अपने तेज बल से उनको उठाया, उनको पता ही नहीं चलने दिया, और यहां ला करके द्वारिका में गोमती नदी के किनारे पर उनको सुला दिया, द्वारिका गोमती नदी के किनारे पर। अंतर्यामी आप प्रभु जाने भगत की पीर, प्रातले ठाड़ो क्यों नदी गोमती तीर। सुबह होने के पहले पहले, मतलब ये भोर में प्रभात काल में जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, चौथे भाग रहे जब रजनी राम सने ही जागोरे, सतगुरु स्वरूप ध्यान उर धरिए राम भजन में लागोरे, चौथे भाग रहे जब रजनी राम सने ही जागोरे। ये रात का चौथा पहर होता है, जब ऋषि मुनियों के संत महात्माओं के जगने का समय होता, उस समय में वे वहां जगे, आंख खुली तो देखा पानी का प्रवाह कलकल कलकल कर रहा है। अरे मैं तो जहां सोया था वहां तो सूखी बंजर जमीन थी, कोई पेड़ की छाया थी, यहां तो पेड़ दिखता नहीं, नदी का किनारा बेकड़ू रेत, अरे यहां ये कैसे आ गए, कौन सी जगह आ गया मुझे, क्या मुझे कोई भूत प्रेत उठा के ले गए, या और यक्ष गंधर्व ले गए, या और कहीं मैं कोई सपना देख रहा हूं, कहीं मैं ऐसा तो नहीं सपने में ही कहीं घूम रहा हूं। बैठ करके पानी का छींटा दिया, आंख धो करके देखा तो अरे नहीं, मैं जाग रहा हूं, सो थोड़ी रहा हूं, पर ये नदी कहां से आ गई, ये नदी है कौन सी पता लगाना चाहिए। कहीं मैं भटक करके और नई जगत नहीं पहुंच गया, जाना मुझे द्वारका, और कहीं भटक गया तो वहां से वापस कौन मुझे स्थान पर पहुंचाएगा, गजब हो गया। ऐसे मन में बड़ी चिंता तुर सुदामा जी बैठे बैठे वहां बात विचार कर रहे थे। इतने में कोई नगरवासी भाई उधर नदी के किनारे पर स्नान शौच के लिए आया, उसे देख करके सुदामा जी ने पूछा, ओ भाई साहब भाई साहब। ब्राह्मण की आवाज सुनी, कहो पंडित जी, नमो नारायण महाराज। बताओ भाई ये नदी कौन सी है? ये नदी गोमती नदी है महाराज। अरे गोमती नदी तो द्वारका के पास है ना? हाँ ये द्वारका ही तो है। सुदामा जी के ये कहां से द्वारका ही? तुम मेरे से मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। मैं जब चला ही नहीं, अभी तो एक घंटा तो हुआ रवाना हुए, द्वारका पहुंच गई। मुझे ब्राह्मण को गरीब को देख करके हंसी कर रहा है, भरोसा नहीं किया? हाँ भाई होगा ठीक है, आप आपका काम करो। फिर और कोई दूसरा आदमी है, उससे पूछा, तीन चार आदमी से पूछने पर विश्वास हुआ कि सभी कह रहे हैं द्वारका है द्वारका। अरे द्वारका है कौन सी? क्यों कई कई मिलते जुलते गांव भी होते हैं ना, नव नांदियानंद बारह जाजीवाल, क्या करेगा, नांदिया नव है, जाजीवाल बारह तेरह है, ये कोई होगी क्या पता। अरे द्वारका वो है जिसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, वो द्वारका है, द्वारकापुरी। सुदामा जी के द्वारकापुरी है वास्तव में, तो इसका मतलब भगवान ने कृपा की, मुझे यहाँ बुला दिया, न्याल हो गया महाराज। हे भगवान, आखिर में आप हो तो दयालु, आ तो बात समझ में आएगी, मारे बात समझ में आ गई है तो वास्तव में आप दयालु, आपको बार बार प्रणाम है। गोमती में स्नान किया, अपना नित्यनिम किया, पूजा पाठ करना चाहिए, वो सब नित्यकर्म किया, भजन जब ध्यान करना चाहिए वो किया, गायत्री का मंत्र जब किया, अब उसके बाद आगे बढ़े हैं द्वारका की तरफ। तो जहां भगवान के 16,108 रानियों के महल थे, उनके एक ही तरह के सभी महल बने हुए, एक एक से बड़े सुंदर सजे हुए, नाना प्रकार की चारों तरफ से सुगंधी आ रही है, फूलों के बाहर आगे जैसे चारों तरफ फूल ही फूल छाए हुए हैं, बंदरवारे लगाई हुई है। ये कोई किसी के ब्याह का घर होगा शायद, किसी के विवाह का घर होगा, लेकिन अब किससे पूछे। चलो होते होते द्वार पर जाकर के पूछा, भैया ये किसका घर है, किसका मकान है? उसने कहा, महाराज पंडित जी ये तो भगवान श्री कृष्ण का महल है, कृष्ण का महल है। अरे रे 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 रे, इतनी सजावट की हुई, इतना आनंद देने वाला, हो चारों तरफ महलों की सजावट देख 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 करके दंग रह गई। अरे 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 अरे, जबान बंद हो गई। अब उस आदमी ने पूछा, महाराज आपको कहाँ जाना है, किससे क्या काम है? कि भैया मुझे जाना तो भगवान श्री कृष्ण के पास है, उनसे मिलना है, वो मेरे मित्र हैं बाल्यकाल के, तो मैं मित्र से मिलने के लिए यहाँ द्वारिका आया हूँ, सुदामापुरी से मैं आया हूँ ब्राह्मण। तो महाराज ये सीढ़ी लगी है ना, ये महल है ना, इन सीढ़ी 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 चढ़ जाओ। वहां जाओगे तो आगे मुख्य द्वार आएगा महल का, वहां पर वो जो पहरेदार है उससे पूछ करके आप महल में पधार जाना। अब सुदामा जी वहां से चढ़ने लगे। अब बूढ़े आदमी पोगता चढ़ने की तो जोर आवे, भाई बताओ अब जो गिरनार चढ़े जगह नठा है, हो रहा है दो रहे, चढ़ने दौरान चढ़ने पीछे उतरना उन्हीं ज्यादा दौर, बने मुश्किल। ऐसे सीढ़ियों से चढ़ते 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 बेचारे हैरान हो गए। एक ब्राह्मण उनके साथ में दरवाजे तक पहुंचा करके वो तो वापस लौट आया। अब वहां द्वारपाल के पास पहुंच गए, द्वारपाल ने देखा पंडित जी आए हैं। अब पंडित जी को प्रणाम किया, वहां पर उनके परिचय की बात पूछी, कबराज मुझे भगवान कृष्ण से मिलना है। उसने भी आगे छुट्टी दे दी, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। ऐसे सात पौड़े हैं दरवाजे, सात पर सभी दरवाजे, एक एक दरवाजे के अनोखी अनोखी कारीगरी, अनोखी अनोखी सुंदरता सजावट देखते ही जाते हैं सुदामा जी, और उनकी महिमा का वखान करते जाते हैं। इतनी कारीगरी कब की होगी, कैसे यहाँ पर है? वास्तव में राजा महाराजाओं का जैसा महल होना चाहिए वैसा है। धन्य हो धोय हो, मेरा मित्र कितना धनवान होगा, कितना धनवान होगा। ऐसे धनवान मित्र के पास मैं जाऊंगा तो वो जरूर मुझे भी धन्य भाग बना देगा, धनवान बढ़ा देगा, कि इतना धन उसके पास में तो उसको थोड़ा बहुत देने में क्या जोर आएगा भाई। ऐसे थोड़े थोड़े मन में विचार भी आते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे ऐसे विचार नहीं करने चाहिए, मैं तो संतोषी हूं ना, संतोषी सदा सुखी। ऐसे कभी विचार वो आते हैं तो कभी ये आता है तो कभी ये पुटक पटक होता है, उतला पतली हो रही है, आगे चले जा रहे हैं। आगे के दरबार पर सुदामा जी पहुंच गए हैं। वहां पहरेदार ने कहा, महाराज आप यहां पर विराजी, मैं समाचार देके आता हूं श्याम सुंदर को। भगवान जानते हैं कि सुदामा आ रहा है, लेकिन जानबूझ करके वहां पर अब भक्त की उत्कंठा को ज्यादा जागृत करना चाहते हैं कि जितनी ज्यादा उत्कंठा जागृत होगी उतना ही प्रभु से मिलने का आनंद उनको ज्यादा आएगा, जितनी प्यास ज्यादा होगी उतना ही पानी पीने का आनंद ज्यादा आएगा, प्यास नहीं होगी तो शरबत पिलाओ तो भी आनंद नहीं आएगा। इसलिए वे उत्कंठा जबरन में पैदा करने के लिए जानते हुए भी अनजान बनकर के महल में आपने पलंग पर विराजमान है, सुदामा जी को विराजमान कर दिया, बाहर की डोडी पर बैठा दिया। भक्त उनका जो पहरेदार था वो गया अंदर, भगवान ने पूछा, ओ भाई कैसे आए तो, कैसे आए हो? महाराज एक ब्राह्मण देवता आपका दर्शन करना चाहता है। ब्राह्मण देवता? अरे ब्राह्मण लोग तो कथा वार्ता ज्यादा क्या करते हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए कब आते हैं? कौन ब्राह्मण है, कहाँ का आया है और कैसा उसका स्वरूप है, कैसी पहचान है? इस विषय में जब पूछा है तो उसने जवाब दिया, महाराज शीश पगा न जगा तनपे न जाने को आये बसे कई गामा, धोती फटी से लटी दुपटी और उपाय उपाना की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल दीन रहो चकिसो वसुदा अविरामा, पूछत दीन दयालु को नाम बताओ तो अपन नाम सुदामा। पहले कहा, महाराज माथे पर उसके पगड़ी का पता नहीं है, ऐसा उसका उलिया है आप ओलखते हो तो, और पैरों में जूती का पता नहीं, चार अंगुल जूती बची हुई है, शरीर पर कुर्ते का कोई पता नहीं है, और महाराज गांव का तो मुझे पता नहीं, कोई गांव का मैंने पूछा नहीं, पता नहीं, धोती जरूर पहनी हुई है, घुटनों तक धोती पहनी है, परंतु वो भी चारों तरफ उसकी हवा महल की बारें खुली हुई है, सभी फटी हुई है धोती पूरी की, धोती फटी से लटी दुपट्टी, दुपट्टा जो कंधे पर डाल रखा है उसके एक एक धागे नीचे लटक रहे हैं जैसे कि खेजरी की लगी हुई सांगरी लटकती हो, ऐसा उसका स्वरूप है बड़ा। और इस दशा में द्वार खड़ो दुज दुर्बल, एक थका मंदा ब्राह्मण है, बिल्कुल थका हारा है, दरवाजे पर खड़ा हुआ है, वो आपका नाम पूछ रहा है, आपसे मिलना चाहता है, कहता है कि मैं उनका मित्र हूं, मेरा नाम सुदामा है, उसने ये बात बताई है महाराज, सुदामा मित्र आपका। और जो ही सुदामा कान में नाम पड़ा कि भगवान के जैसे कोई करंट लग गया, करंट लग गया, पलंग पर बैठे कुछ भी जवाब दिया नहीं, उचक करके नीचे कूद पड़े, दौड़ पड़े सीधे दरवाजे की तरफ, पहरेदार ने कोई जवाब तो देवे कहां भागे जा रहे हैं, बेचारा वो भी धीरे धीरे कुछ 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 करके भागे, लेकिन भगवान तो आज फुल स्पीड में दौड़ गया, आज तो पूरी स्पीड कर दी, दौड़े दौड़े बाहर गए, बाहर जाकर के जो सुदामा बैठा था वो तो अपनी कारीगरी देख रहा था महल की, इधर से उधर इधर से इधर देख रहा है, तो उसी दशा में जो ही बाहर पहुंचे तो उसको तो पता नहीं कौन आया कौन आया, भगवान ने जो ही बैठे मित्र को देखा कि भुजाओं में पकड़ करके चिपका लिया, छाती के चिपका लिया भगवान ने अपने मित्र को जोर से कस करके। अब जो ही भगवान ने सुदामा को चिपकाया है, अब सुदामा भी घबरा गए कि ये कौन पहलवान आ गया, अभी मुझे पटकेगा पछाड़ेगा, तू यहां कैसे आ गया, मेरे महल को गंदा कर देगा। घबरा गए सुदामा जी, कांपने लगे, ये कौन है कौन है, क्यों नजदीक आने के बाद में है कौन, दिखता भी तो नहीं, थोड़ा दूर ही होता भी तो दर्शन अच्छा होता है, बिल्कुल पास में चिपकने के बाद दर्शन भी नहीं होता। ऐसे भगवान बड़े प्रेम के साथ में सुदामा को चिपकाने के बाद आंखों से टप टप आंसू गिराने लगे हैं, और जो ही थोड़ा दूर करके देखा सुदामा ने पहचाना, मित्र तुम कृष्ण हो, कृष्ण सुदामा तो कहे कृष्ण और कृष्ण कहे सुदामा, बस इतनी बोली निकली, बाद में दोनों की बोली बंद। प्रेम का अतिशय रूप होता है तब यही दशा होती है, जड़ चेतन हो जाता है, चेतन जड़ हो जाता है सज्जनों। इधर से जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चैतन्य, इस जड़ में चेतनता, चेतन में जड़ता आ जाती है, दोनों में इस प्रकार है। अतिशय प्रेम की पराकाष्ठा भाई वो मिलन बहुत आनंद भरा। अब बाद में भगवान मित्र का हाथ पकड़ कर, भैया तुम यहां क्या कर रहे हो, अंदर चलो। अंदर से पहरेदार आकर के देखने लग गया, दंग रह गया कि आयो कुछ जवाब तो दिया नहीं, खुदो खुद ये इसको उठाने के लिए लेके चलने के लिए आ गए। ऐसा कैसा विलक्षण इनका मित्र है, ये समझ में नहीं आई। इतने दिनों की हूस थी ना मित्र से मिलने की, आज एक दिन में भगवान उसे पूरी कर देना चाहते हैं। हाथ का सहारा दे करके सुदामा को अंदर लेकर के चले, अंदर अपने विराजमान होने के सिंहासन पर सुदामा को ऊपर बैठाने लगे। सुदामा कहे नहीं नहीं मुझे बता, मुझे तो नीचे बैठे दो, मुझे नीचे बैठे दो, ये तो आपका सिंहासन, आप विराजी महाराज, ये तो आपका सिंहासन है। भगवान कहे मेरा मित्र मेहमान बनकर के आए, मैं ऊपर बैठू मित्र नीचे बैठे, यह काय का न्याय बताइए। नहीं आज तो मेरा मित्र ही इस सिंहासन पर बैठने का हकदार है, इसलिए मुझे तुम्हें यहीं बैठना पड़ेगा, आप यहीं बैठो। जबरन उठा करके उनको सिंहासन के ऊपर बैठा दिया, आप उनके चरणों में बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण, यही भगवान का स्वभाव होता है। भगवान करते क्या है, एक जगह प्रश्न किया गया तो उसके उत्तर में यही बात आई कि भगवान जो अपने पास में आता है उसको ऊपर कर देते हैं, आप नीचे हो जाते हैं, उसको ऊपर उठाते हैं, आप उसके सामने विनम्र बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान वहां अब सुदामा के चरणों में विराजमान हो गए। सुदामा जी ऊपर बैठना, कभी ऐसे सिंहासन पर बैठा नहीं, बेचारा बैठे बैठे ही घबरा रहा है, अरे मेरे से कोई गलती हो जाएगी, ये सिंहासन फट जाएगा, और मेरे शरीर की चमड़ी फटी हुई, इसके छूने से कहीं अगर ये सिंहासन फट गया तो मुझे ओड़वा मिलेगा, तुझे यहां बैठा है इसलिए मेरे सिंहासन को खराब कर दिया तेने, गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा। ऐसे मन ही मन घबरा रहे हैं बेचारे, सो करके इकट्ठे हटे हो रहे हैं। भगवान पैरों में बैठ करके अपने पीताम्बर से मित्र के पैर पोंछने लगे। रानी खड़ी खड़ी बार देख रही है पास में, ये हलबली बची ने दौड़ दू बची, भगवान दौड़ करके गए, तब सब रानी में खलबली बची का आज क्या बात है, खुद खुद भगवान दौड़े कैसे जा रहे हैं श्याम सुंदर, क्या कारण है। वैसे तो सब की सब रानी इधर उधर से इकट्ठी होकर के आ गई उस महल में एक ही जगह, वे खड़ी खड़ी देख रही है आज आप खुद, अरे जो कोई आया है इनके चरणों में बैठा है वो, लेकिन आज ये खुद इस ब्राह्मण के चरणों में बैठे है, इतना ऊंचा ये महात्मा कहाँ का है, ये कौन से राजा महाराजाओं से भी ऊपर हो गया। लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं, चुपचाप खड़ी गुर 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 देख रही है। भगवान पीताम्बर लेकर के वहां पर सुदामा के पैर पोंछने लगे, लेकिन पीताम्बर से जो ही पैर पोंछने लगे तो उसमें लगे हुए कांटे, कांटे में पीताम्बर अटक गया तो तार निकल गया, लंबे लंबे तार सब भगवान के पीताम्बर है, जो खुद तारो तार हो गया, वो तो कांटों में तार इस प्रकार खुल गए। ऐसे पैरों की दशा देखी, बिवाई फटी हुई है और कांटे के जाल लगे हुए हैं। अब उस दशा को देख करके भगवान को बड़ी भारी एकदम हृदय में पीड़ा पैदा हो गई। वो कैसे भी हाल विवाहन में प्रभु कंटक जाल लगे पग जोये, हाय सका तुम पायो महा दुख आये, इतने कितने दिन खोये। और देख सुदामा की दीन दशा, ऐसी दयनीय दशा सुदामा की, कहने लगे मित्र तू इतने दिन क्यों नहीं आया मेरे पास, तेरे पैरों की ये दशा, कर करके कांटे चुक चुक करके एक एक करके निकालने लगे, एक एक करके कांटे निकालने लगे, बहुत से कांटे निकाल दिए, गिन गिन करके दोनों पैरों के, पर कोई कोई ऐसा गहरा कांटा जो चिमटी बिना निकले को नहीं हो, कांटा काटना नहीं है जो निकले को नहीं, शहरी लोगों के तो कांटा काटना मिले नहीं, गांव वाला को तो मिल जाए, लेकिन शहरी लोगों के पास में कांटा खींच रही, कांटा काटना कहां पर है, कांटा करना कांटे को पकड़ कर खींचने का चिमटी नहीं, भगवान के पास में वही मुसीबत, हाथ में पकड़ा है वो तो निकाल लिए, चिमटी में पकड़ करके वो निकाल लिए कांटे में, लेकिन कोई ऐसा कांटा गहरा चुभा हुआ था, कड़क चमड़ी निकल नहीं पाया था, उस कांटे को भगवान ने दांतों से पकड़ करके खींच करके निकाला है। जो ही कांटा बाहर खींच के निकाला, पीछे खून की धार निकल पड़ी हो, और इधर खून की धार, इधर श्याम सुंदर के आंखों में आंसुओं की धार झर 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 टपकने लगी। रानी ने देखा क्या हो गया, श्याम सुंदर रो रहे हैं। उन्होंने पूछा, प्रभु क्या हो रहा है? अरे मुझे क्या हो रहा, तुम पूछ रही हो, पंचायती कर रही हो, लेकिन ग्राए मित्र के पैर धुलाने चाहिए, तुम्हें होश ही नहीं है? मित्र के पैर धोने चाहिए ना, तुम पानी ला करके पैर नहीं धुला रही हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है? वो एकदम 12 नंबर की डांटी पड़ी। डांट पड़ती रानी घबरा गई, जल्दी चलो परात लाओ, झारी लाओ, जल लाओ, और जल्दी चरण धुलाओ, आज तो इस पंडित जी के नहीं तो मुसीबत हो जाएगी घर में। इसी प्रकार जो ही ये दौड़ करके रानी घर में गई, परंतु जारी भी कोई ठिकाने मिले तो कभी किसी के पैर धोने का काम पड़े ही नहीं। वो रखी ऊपर ताक में, अलमारी में लॉक लगा हुआ, निकालने में चाबी ढूंढने में टाइम लग गई बहुत, भगवान को इतनी देरी कहां सहन होती है। वो तो जो आंखों से जो आंसू गिरते गए, उन आंखों से गिरने वाले आंसुओं से भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त मित्र के सुदामा के पैर धो डाले। झारी लेकर के आवे तब तक तो चरणों की सफाई हो गई। बस रानी ने कहा, वह झारी तैयार है महाराज, ले जाओ तुम्हारी झारी, भी कोई जरूरत नहीं है, समय पर जो काम नहीं आ रही तुम किस काम की हो। रानी दौड़ करके आज घबरा रही है कि आज तो बड़ी फटकार पड़ रही है, एक ही बात के लिए फटकार पड़ रही है। हमेशा स्नेह देने वाले कभी कटु वचन बोलते नहीं है, लेकिन एक मित्र के लिए आज कितने कितने हमारे को भी ऐसे वचन कहते हैं। धन्य है ऐसा मित्र इनका जो कितना भाग्यशाली है, वे हाथ जोड़ करके वहां खड़ी हो गई है। अब देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। चरण धो डाले सुदामा जी के आंखों के जल से। अब चरण धोने के बाद अब उनको पलंग के ऊपर विश्राम करे, महाराज आप आए हुए हो, थके हुए हो, इसलिए थोड़ा लेट जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो, फिर बातें करेंगे। सुदामा जी कह, रात दिन विश्राम भी करा और काम कहीं करा, हमारे काम तो कहीं है को नहीं, धंधा तो कोई हो तो यहाँ तो विश्राम करना है, फाकम फाक रहना है, कोई खेती बाड़ी तो खेती बाड़ी करे, गाय भैंस हो तो उनकी सेवा चाकरी करे, यहाँ तो बकरी भी नहीं है, इसलिए तो आड़ दिया आने वाला भगवान। बाद में मित्र के पास पलंग के ऊपर उनको बैठा दिया, आप भी मित्र के पास में बैठ गए पलंग पर, और अब बड़े प्रेम भाव से घर की बातें करने लगे, जैसे कोई मित्र बात करता उसी प्रकार। कछु भाभी हमको दियो, भगवान कहने लगे मित्र से, अरे मित्र मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या सामान भेजा है, लाओ वो सौगात मुझे दे दो। रानी खड़ी खड़ी पास में खड़ी देख रही है, तो सुदामा जी को शर्म आ गई, अभी लुके सूखे चावल में इनको देऊं, ये क्या सोचेगी रानी इनकी, कुछ नहीं दिए सर, देवो में तो कुछ लाए नहीं, भूल गए, अब समझ लो इतने एक नहीं लाए, नहीं लाए इतने होगा महाराज, कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लाया, कछु भाभी हमको दियो, मेरी भाभी ने कुछ चीज भेजी है क्या, कुछ नहीं लाए। अरे महाराज कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं लाए करते रहो, लेकिन मैं जानता हूं आदमी तो कोई भूल कर सकता है, लेकिन औरतें भूल नहीं करती है, वो हर बातें को याद रखती है, ब्याह शादी का काम पड़ता है, कई निमंत्रण नियुक्ति का काम पड़ता है, कुंकु पत्रिका काम पड़ता है, तो वो याद दिलाती है कि मुख जी की चिट्ठी दीख नहीं दी, पत्रिका दीख नहीं दी, उसको बुलाया कि नहीं बुलाया, उनको ज्यादा याददाश्त रहती है। इसलिए महाराज मालूम है भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ न कुछ चीज भेजी है, लेकिन लगता है तुम बचपन के समान चोरी की आदत आज भी नहीं छोड़ रहे हो। दा भी गांठरी कांख में रखी कौन के हेत, एक खाक ऊंडी ऊंडी क्यों दबाओ महाराज, दबाई क्यों रखो, खाक ने खुली करो, हाथ ऊंचो कर दो, नहीं हाथ क्यों नहीं ऊपर कर देते हो, लेकिन मालूम पड़ रहा है कि अब पहले की चोरी की आदत आज भी नहीं गई आपकी, बचपन में आपने चोरी की थी याद है कि नहीं, आगे चना गुरु मत दे सले तुम खाए हमें नहीं दीने। आगे गुरु माता ने याद है कि अपन चने दिए थे, एक दिन चने दिए थे, हम लकड़ी लाने के लिए गए थे, तो उस समय बरसात का मौसम हुआ, तो जब जंगल में लकड़ी काट रहे थे, ज्यादा सर्दी बढ़ने लगी, एक पेड़ पर तुम चढ़ गए, एक पेड़ पर मैं बैठ गया, तो बड़े आप थे तुम, और गुरु माता ने वो चावल की पोट नहीं चने की पोट ले आपको दे दी थी, आगे चना गुरु माता दे, तो आपने वो अपने पास में रख ली। अब सर्दी के कारण से रात के टाइम भूख लगी तो आप तो चने चबाने लग गई, कड़ कड़ चने खाने लग गए। अरे मैंने पूछा, अरे मित्र क्या कर रहे हो, दांत कैसे बोल रहे हैं? अरे सर्दी के मारे दांत कड़कड़ बोले हमारे, हो दूज नहीं आवे, सर्दी से दांत बोल रहे हैं, भगवान के दांत कटकट करते ही नहीं, जो हमेशा ही खाना भगवान को अर्पण किए बिना कोई चीज खा लेना पा लेना, उसी के परिणाम स्वरूप जीवन पर्यंत सुदामा जी के पास में कोई भी संपत्ति नहीं आ सकी जब तक उन्होंने भगवान को दिया नहीं। आज वो चावल लेके आए, वो देंगे तो भगवान की कृपा से उनको वो वापस मिलेगा, अन्यथा नहीं मिला। श्याम कहे मुस्काए सुदामा से चोरी के बहाने में हो जो प्रवीण, लोग तो मुझे कहते हैं कि ये चोर जार शिरोमणि है, लेकिन वास्तव में गांठरी कांख में दाब रहे तुम छोड़ तो नहीं सुधार सभी ने, पाछली बाण अजो न गई तुम वैसे ही भाभी के चावर की ने, पहले की जो आदत है वास्तव में अभी तक तुम्हारी मिटी नहीं है, जैसी पहले आदत थी आज भी वही तुमने मेरे भाभी के चावलों की दशा कर दी है, तो अब तुम नहीं देते हो तो मैं ले लूंगा, क्या करोगे? भगवान ने जाकर के जबरन उनकी खाक में हाथ घुसेड़ दिया। अब आप खाक दबावे तो बहुत, लेकिन बूढ़ो बाप ने कितनी जोर भगवान के जोर लगाया तो अंदर कपड़ा जा था नहीं, पुराना तो था ही, वही फट गया, कपड़ा फटते ही चावल सारे के सारे पलंग पर नीचे गिर गए। अब शाम हंसने लगे, लोग कहते थे नहीं लाया ये, पोल खुल गई ना, लो अब तुम नहीं देते तो लो मैं खुद ही अपने भाभी के सौगात स्वीकार कर लेता हूं। चटपट दोनों मुट्ठी चावल के साथ में भर ली, बड़ 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 करके चबाने लग गए। अब कितना स्वाद आया उनको तो वही जाने भैया, स्वाद स्नेह में है वस्तु में नहीं। इस प्रकार स्नेह के वशीभूत होकर के एक मुट्ठी चावल चबा गए बिना नमक मिर्ची कुछ भी नहीं, मसाला नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, हो याद सूखे चावल चबा गए। अपन फाको पर रहे तो भावे गए मुंडे में चबाई जे, दूसरी मुट्ठी और खा गए और तीसरी मुट्ठी फेर वो तो चावल खाने के लिए तीसरी मुट्ठी चावल के लिए और लंबी लंबी कर दी। जब तीसरी मुट्ठी चावल भरने लगे तो इतने में वहां पास में खड़ी रुक्मिणी ने जाकर के भगवान का हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो आप ये? हाथ गयो प्रभु को कमला कहे नाथ कहा तुमने जी धारी, तंडुल खाए मुठ्ठी दुई दिन की हो तुमने दो लोक बिहारी, खाए मुठी तीजी अब नाथ कहा निज वास की आस बिचारी, रंग कहीं आप समान क्यों प्रभु आपने चाह तो हो न भिखारी। हे महाराज, रुक्मणी ने हाथ पकड़ करके कहा आप क्या कर रहे हो महाराज, पता है कि नहीं आपको, दो मुट्ठी चावल खा करके तो आपने इसको दो लोक दे दिए है ब्राह्मण को, अब तीसरा लोक अगर तीसरी मुट्ठी खा करके इसको दे दोगे तो आप खुद कहां रहोगे, कोई ठिकाना रहे कि नहीं आपका, पहले इंतजाम कर रखा कोई नया मकान चेंज करे जो पहले से प्रबंध कर ले, वो प्रबंध किया कि नहीं कहीं पर बताओ, कहां रहने की आशा है? और केवल आप अकेला को नहीं ला रहे, परिवार में सभी आए, 16,000 रहने साथ में हमें सब आ जाए, क्या खाएंगे क्या करोगे आप तीसरी मुट्ठी इनको दे करके, रंग कहीं आप समान क्यों प्रभु, एक गरीब ब्राह्मण को तो आपने अपने समान बना दिया और आप खुद भिखारी होना चाहते हो। इस प्रकार बीच में हाथ पकड़ करके रुक्मणी जी ने टोका। अब जो क्रम होता है ना, क्रम में जोटा पड़ गया, स्वाद में एकदम रुकावट आ गई, क्यों रस में विश्व विवाह में कियो, भगवान को बहुत बुरा लगा, अखर गई बात कर, अरे स्त्री तेने मेरे हाथ पकड़ करके मुझे तो जो आनंद आ रहा था अमृत पीने के समान, उसमें तेने जहर घोल दिया, गुड़ गोबर कर दिया, मेरा सारा आनंद मिटा दिया, अगर मैं तीसरा लोक ब्राह्मण को दे देता तो तेरी क्या ज्यादा नुकसान होता। तेरी क्या तकलीफ पड़ती, मैं तेरे से तो मांगता नहीं। और भले क्योंकि लोग कहते हैं कि भक्त का भगवान है, जो भगवान को भोजन करता है, खिलाता है, देता है, वो भक्त संसार में दुखी रहता है। ये जो मेरे ऊपर कलंक लगा हुआ ना, कलंक का टीका है, ये कलंक का टीका मैं सदा सदा के लिए मिटा देना चाहता था कि कोई भगवान को दे फिर वो भी दुखी रहे, ये नहीं रहने देता नाम। लेकिन तेने बीच में सारा मामला रोक दिया, इसलिए अब ये बात पूरी नहीं हो पाएगी, क्रम टूट गया। भामी ने मोई जमाई भली भी दिल कौन रियो जग में नरंग का, कोई मुझे प्रेम भाव से भोजन करावे फिर वो कभी दरिद्र हो, ये ऐसा हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए। मेरा ये कलंक मुझसे सहन नहीं होता, लेकिन अब तेरे कारण से वो सहन करना पड़ेगा। भगवान ने रानी से कहा, देखते थे औरतें थे, पंचायत तो बहुत करी करो, तुम लोग पंचायत तो बहुत करती हो, परंतु जो काम करना चाहिए वो करने लायक काम तुमसे होता ही नहीं। आज तो पूरी डांट है नहीं पूरा ज्यादा ध्यान रखना, जो काम करना चाहिए वो काम तो करती नहीं, बीच में पंचायती करती हो, हाथ पकड़ लिया, अरे मेरा मित्र क्या घर पर रोज रोज आता है, इसको प्रणाम भी नहीं किया तुमने, तो क्या ये ब्राह्मण क्या सोचेगा कि घर में औरतें अनपढ़ है, कोई जाने को नहीं, ब्राह्मण ने सत्कार करना जाने को नहीं, तुम समझती नहीं, प्रणाम करना चाहिए पहले, आया अतिथि को सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए, आश्रमधारी चाहिए। वाणी महाराज ने लिखा है, आश्रमधारी चाहिए प्रथम आऊकार बैठा उबा पावना आरिस्ता उधार, स्थानधारी के लिए आने वाला मेहमान होता है वो भगवत रूप होता है, उसको हमेशा आदर दो, आदर सम्मान दो। इस प्रकार रानी ने बात सुनी, दूसरी रानी से कहा, आज जल्दी चलो, जो आज प्रणाम कर लो, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी, आज घर में खैरियत नहीं है, सोच लो। सब रानियों को टेलीफोन हो गया, हाथों हाथ सब रानियों का झुंड इकट्ठा हो गया, 16,108 सब कतार में लगकर खड़ी हो गई। अभी जल लेकर के आई ना महिलाएं, जैसे अपनी कतार में लग करके आई, ये तो कई दो तीन की सामान कतार, लेकिन वहां एक एक की कतार, एक लेन, अब कितने किलोमीटर लंबी लाइन लगी होगी बताओ, वो कतार लग गई उनकी। और सबसे पहले रुक्मिणी ने आकर के सुदामा जी को प्रणाम किया, नमो नमः भूदेवाय नमो नमः। सुदामा जी उठ करके ओहो, अब उसे बड़े प्रेम भाव से सौभाग्यवती पुत्रवती पति प्रिया भाव आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो और पति को प्यारी हो, ये सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। रुक्मिणी जी को आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद देकर के वो आगे चल दी। सत्यभामा जी आई, सुदामा जी को पता नहीं ये कौन है, किसको क्या कहूं, कौन से कई आगे होगी इकट्ठी, लेकिन कौन है। मित्र से पूछने लगे, महाराज जी क्या है, इसको क्या मान करके आशीर्वाद दो, आपके भाई की दूसरी, ओहो राजाओं के दो औरत है, राजाओं के दो औरत होती है तो मालूम नहीं मुझे, चलो सौभाग्यवती पुत्रवती पति प्रिया भाव, उसको भी पूरा आशीर्वाद। बाद में कालिंदी आई, कालिंदी ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने देखा मित्र की तरफ, ये क्या है, वही है, वो भी आशीर्वाद पूरा का पूरा मिलने लगा। कालिंदी आई, सत्या आई, मित्रविंदा आई, इस प्रकार ये करते करते रानियों की लहर आते आते सुदामा जी 10-20 के लिए तो पूछा कि ये कौन है कौन है, बाद में पूछना बंद कर दिया, है जो सब इनकी औरतें दिए, चलो अपना तो पूछे मत। सौभाग्यवती पुत्रवती पति प्रिया भाव, पर इतना लंबा चौड़ा आशीर्वाद देना सुदामा जी के लिए गड़बड़ हो गया, इतना आशीर्वाद कब तक देते हैं, टाइम बहुत लगती है, तो आशीर्वाद को थोड़ा छोटा कर दिया, पुत्रवती छोड़ दो, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती हो। सौभाग्यवती का आशीर्वाद लिया, गई आगे निकल गई। अब सौभाग्यवती बोलते 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 बेचारे सुदामा जी तो ओठ थक गया, जवाब दे गया, ओठ थक गया, जनाब आवे जकाने हाथ से आशीर्वाद दे दे, आवाज कर हाथ को आशीर्वाद दे। वैसे भी कुछ रानी आई, हाथ का आशीर्वाद लेकर के आगे चली गई, हाथ भी जवाब दे गया, दुख ला गया। बिना वो बेरिंग के, बिना ग्रीस के बेरिंग काम थोड़ी करे भाई। हाथ ने जवाब दे दिया तो सुदामा जी ने अब उसको गर्दन झुका झुका करके प्रणाम करना चालू किया, नेत्र झुका के प्रणाम चालू किया, आओ स्वीकार करे। प्रणाम तो स्वीकार करना चाहिए, नियम है, क्योंकि राम राम कोई कहे शीश नाय कर धार, जो कोई झेले नहीं तो गौहत्या को भार। कोई प्रणाम करे स्वीकार नहीं करते हैं तो गौहत्या जैसा पाप लगता है। चाहे कुछ भी तरह स्वीकार करो, मालूम पड़ते ही स्वीकार जरूर करना चाहिए। इस प्रकार जब ये सुदामा जी गर्दन से भी आशीर्वाद देते देते गर्दन ने जवाब दे दिया, गर्दन दुखने लगी, चिड़क पड़ा, निजो दशा हो गई। सुदामा जी क्या, ठहरो भाई, ठहर जाओ, थोड़ी देर इंटरवल दो, अपने देना इंटरवल, थोड़ी देर ठहरो, विश्राम करो। भगवान से पूछने लगा सुदामा जी, महाराज आप अनंत हो जैसे आपकी औरतें भी अनंत है, कि इनका भी कोई अंत है? आप तो अनंत मान लिया, और तो कोई अंत है कि नहीं? भगवान ने कहा सुदामा अभी तक 2312 आई है, सिर्फ 16108 है, सिर्फ 16000, सिर्फ एक गिनती में को नहीं, अभी तक 2312। सुदामा जी हो रे, इतना आशीर्वाद कर दे, अरे वह तो बेचारा बहुत नीचे गर्दन कर ली, मैं इतने को आशीर्वाद नहीं दे सकूंगा, अगर नहीं दे सकूंगा तो अब किन्हीं को मिल गया, कोई बाकी बच जाएगी, इनकी ये नाराज हो जाएगी, रूठ जाएगी कि हमारे को आशीर्वाद नहीं मिला, क्या करो। भगवान उनकी सुदामा जी की स्थिति समझ गए कि अब ये बोले थक चुके हैं, अब इनको परेशान नहीं करना चाहिए। उस समय भगवान ने रानी से कहा सब लैंड जोड़ करके, लैंड में हाथ जोड़ के खड़ी हो जाओ, और आप खुद रानियों के पास जाके खड़े हो गए और कह दिया मैं सभी रानियों की तरफ से आपको प्रणाम करता हूं, सबका सम्मान आप स्वीकार करो। ये युक्ति निकाली भाई, अब मित्र को किसी न किसी प्रकार से दुख नहीं देना चाहिए। मित्र ने कहा ओ सभी रानी आपकी प्यारी हो, भक्तिमती हो, कल्याणमती हो, सबका कल्याण हो और सब मंगलमय हो, ऐसे खूब धरपाऊ आशीर्वाद दिया, सब रानियों को आशीर्वाद मिला। रानी वहां से गई, दो दिन वहां रुके सुदामा जी, दो तीन चार दिन रुके, कुछ दिन रुके वहां पर सुदामा जी। आज की रात बीती, सुबह का समय हुआ, स्नान करने की व्यवस्था की गई, चौक में सोने का सिंहासन चौकी का लगाया गया, उसके ऊपर सुदामा जी को विराजमान कर दिया, महाराज आप यहां पर आइए, अब गर्म और शीतोष्ण जल, पोष महीने में सुदामा जी वहां गए हैं, पोष महीने में, और तो गर्मी के सर्दी में जो जैसा पानी शीतोष्ण चाहिए, गर्म किया हुआ ऋतु के अनुकूल, वैसा जल अभी लेके आते हैं, विराजो। भगवान सुदामा जी को वहां पर बैठा के गए, रानी को आदेश मिला तो 16108 रानी कलश भर करके लेके आ गई, हाथ में पूजा की थाली, इसमें कुंकुम, चंदन, इत्र, गुलाल और वो एक प्रकार के उत्तम उत्तम पदार्थ, उपटन की सामग्री, पीठी वगैरह सारी सामग्री लिए हुए सब वो चली आई। वो पूरे चौक में चारों तरफ उन सब रानियों का झुंड छा गया। वो हरि कीर्तन करती करती वहां पर पहुंची है। सुदामा जी ने रानियों को आते हुए देखा, वो घबरा गए कि ये सब रानियां जो अभी नमस्कार करती, इतनी हमारे पास पानी कूड़े जन, मैं तो आटे गंगा जी में समाधि लगा दे, हमारे जल समाधि लग जाएगी मेरे तो यहीं पर, अब वापस कैसे जाऊंगा। ओ हो, परंतु रानी तो भाई आगे आदेश है भगवान का मानने वाली, क्या चटपट वहां बैठ करके उन्होंने पूजन करना चालू कर दिया। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, लेकिन यहां सुनवाई होने वाले नहीं है भाई, यानी मानने वाले, पूजा करनी चालू कर दी, जल डालना चालू किया। सुदामा जी बैठ करके शंकर भगवान को याद करते, हे भोले बाबा जाओ, आप हमेशा जल से स्नान करते रहते हो, तो आज आप ही मेरी जगह स्नान कर लेना, नहीं तो मैं तो अभी चला जाऊंगा, ऐसा कह करके बैठ गए। समाधि लग गई सुदामा जी को, अब रानियों ने अच्छी तरह उनकी पूजा कर दी, मूर्ति ने बोले कितने चंदन चढ़ाओ, कितने पानी कूड़ो, कहीं को नहीं बिगड़े। सांस लेने की जरूरत नहीं, ऐसे समाधिस्थ हो गए। सभी ने उबटन लगाया, इत्र चढ़ाया, गुलाल चढ़ाया, चंदन लगाया, जल से स्नान कराया, तेल की मालिश की, सब कर गई। सब रानियों को छुट्टी, कोई किसी को मना नहीं कर करा करके सभी रानी अपने घरों में चली गई। बाद में सुदामा जी के पास आए मित्र, हाथ पकड़ कर, अरे मित्र क्यों उठो को नहीं? अब उठे कहीं भी रानी देख रहा था नहीं, घबरा गया, वो तो दैल बैठ गई थी। हाथ लगाया तब आंख खोली, देखी कोई है तो नहीं पास में, कोई नहीं है। हे महाराज मैं तो डर गया, इतनी रानी पानी से मैं कहीं मर नहीं जाऊं। अब सब स्नान हो गया, महाराज नए कपड़े पहन लो, नए कपड़े पहनाए, और पहनाने के बाद में आप पूजा पाठ करना, पूजा पाठ कर लीजिए। पूजा पाठ कर लिया, भोजन तैयार है, भोजन कर लीजिए। भोजनशाला तैयार की गई, अब उसके दरवाजे पर सुदामा जी को खड़ा किया, देखने लगे अंदर 16,108 थाल लगे हुए हैं पाटों के ऊपर, बीच में बैठने का पाट, भोजन करने लायक, चारों तरफ थाली थाल लगे हुए हैं, उत्तम उत्तम भोजन की सामग्री, सब भिन्न भिन्न प्रकार की। श्याम सुंदर ने कहा, मित्र आपके आगमन के समय रानियों ने ये सारी भोजन की सामग्री अपने हाथ से बढ़ाई है, नौकर चाकर से नहीं बढ़ाई, इसलिए आप चलो और भोजन पाओ। सुदामा जी खड़े होकर के वहां दंग रह गए, अरे अरे इतने थाल भोजन मैं खाऊंगा, इतने थाल भोजन में? तो भगवान से कहने लगे, देखो महाराज आप कहो तो मैं खोड़ा टांगन जाऊं, एक एक थाल लें, शाम तक नमस्कार तो करना जाऊं, प्रणाम करना जाऊं, बस इतना खाना पीना तुम्हारो नहीं है महाराज, मैं कोई भीमसेन थोड़ी हूं, मैं जो कोई खावे को अगस्त ऋषि थोड़ी हूं मैं, या अग्नि नहीं हूं मैं, जो कुछ भी जितना भी खाऊं अजब हो जाए? नहीं महाराज। भगवान जबरन हाथ पकड़ करके उनको ले गए, पाटे पर बैठाया। सुदामा जी तो वहीं पर बैठ कर, हे परमात्मा आप जानो, इतना कहते ही सब थाल में से एक एक कण, अंश मात्र कण है, भोजन इकट्ठा हो गया और सामने भोजन करने लायक थाली तैयार हो गई। अब उस समय जो मित्र का चिंतन किया, और दो थाल, एक श्याम सुंदर के लिए एक सुदामा के लिए, दोनों ने बैठ करके भोजन पाया। अब भोजन पाया, अब आनंद आया, ठीक है अब युक्ति मिल गई कि जब कभी कोई ज्यादा बात हो, आपत्ति में हो, भगवान का चिंतन कर लो, सारी आपत्ति मिट जाएगी। भोजन के बाद पान आई, पान की बारी, पान के थाल आया, वो भी ढेर लग गया। सुदामा जी आंख मीच करके, हे भगवान आपकी जय हो कह करके एक पान लगाया, एक पान में सब पान मिल करके आग, बाकी के पान गायब। भगवान से कहा, अब जुक्ति मिली मुझे, इतने दिन तो परेशान हो गया, लेकिन अब मालूम है कि आपका नाम लेते ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भोजन हुआ, मज्जन नमन प्रसाद सब। अब उसके बाद हाथ पैर धोकर के, भोजन के बाद दातन को ला करके महल में जाकर के जब सुदामा जी बैठ गए, महल में बैठे हैं, वहां पर रानियां हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से नतमस्तक होकर के महल में आई। श्याम सुंदर का, कैसे आई हो देवियों, कैसे आगमन हुआ है इस समय तुम्हारा? महाराज एक अर्जी है, एक निवेदन है हमारा। क्या है बोलो? महाराज आपके मित्र कब कब हमारे इस द्वारकापुरी में आएंगे, तो हमारी तरफ से विनती है कम से कम एक एक दिन का हमारे को सेवा करने का मौका मिलना चाहिए, एक एक दिन हमारे महल में इनकी पधरावनी होनी चाहिए। सुदामा जी ने याद हिसाब लगाया, एक एक दिन पधरावनी करने का मतलब 40 साल तो मुझे यही बीत जाएंगे, 40 वर्ष तो आटे पूरा हो जाए, और 5,000 जी तक नहीं तो कोई टाबर मिले, नहीं कोई लुगई मिले, सारा गांव घर पर घर उजड़ जाएगा। भगवान से बात सुन दे, महाराज आमद भर लेना, ये मैं स्वीकार नहीं करता हूं, मैं नहीं जा सकूंगा एक एक दिन एक एक रानी के घर में, ये तो आप ही पोसाओ महाराज, कैसे इतने एक घर में एक औरत होती है भी उस घर को निभाना मुश्किल हो जाता है, पर इतनी औरतों को आप कैसे निभा रहे हो? कितनी बड़ी विचित्र लीला है आपकी, आपको बार बार प्रणाम है, आप इस बात को स्वीकार नहीं करें ये ख्याल रखना। प्राणियों के आंसू आ गए तो महाराज हमारे घर ऐसे ही अपवित्र रहेंगे, जब तक सत्पुरुषों के पैर नहीं पड़ेंगे हमारे घर में वो घर किस काम के। इसलिए दया करो महाराज। भगवान कहने लगे महाराज आपको कुछ तो रियायत करनी पड़ेगी, कुछ तो टाइम देना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे करो एक एक दिन का मौका मत दो, पर एक एक बार घर में जाने का मौका दे दो, घर में जाकर के वापस आ जाओ। आपके शरीर की हवा लग जाएगी, घर पवित्र बन जाएगा, इतना तो कर दोगे आप। सुदामा जी के एक घर में जाके आना है ना, मतलब कितनी सीढ़ी है, इतने सीढ़ी उतरो फिर चढ़ो, फिर उतरो फिर चढ़ो, किसी को कोई सजा देनी हो तो उसको इस प्रकार बार बार चढ़ाने उतारने काम करो भाई, ये काम भी मैं नहीं कर सकता। सुदामा जी ने मता कर दिया। अब रानी रोने लग गई, अब हम क्या करें प्रभु, हमारा मनोरथ कैसे सफल होगा और हम किससे जाके विनती करें पुकार करें। ऐसी रानी व्याकुल होने लगी। भगवान ने एक और उनके सामने प्रस्ताव रखा, ऐसे करो सुदामा जी अब आपको चढ़ना उतरना नहीं पड़े, ऐसी कोई युक्ति बता दूं तो। तो महाराज कोई बात नहीं, बताइए कौन सी युक्ति। वो युक्ति है मैं गरुड़ को बुला देता हूं, आप गरुड़ के ऊपर बैठ करके जाओ, हेलीकॉप्टर होता नहीं आजकल का गरुड़ है, कहीं भी उतर जाए कहीं भी चढ़ जाए, गरुड़ को बुला देता हूं, इस पर आप बैठ करके प्रत्येक रानी के महल में आप पहुंच जाओ और वहां वे आपकी पूजा पाती कर लेंगी और उसके बाद आप वापस पधार जाना, तो आपको तकलीफ भी नहीं होगी, उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा, ये काम ठीक है। सुदामा जी ने कहा देखो याद रखना मैं गरुड़ से नीचे नहीं उतरूंगा, फिर कहोगे कि नीचे उतरो और मारे इन कमरे में चालो, मारे इन रसोई में आलो, मारे फलाने जगह हालो, डागले हालो, ये काम मेरे से नहीं होगा, बस गरुड़ पर बैठा रहूं, उसमें आपको संतोष हो तो स्वीकार कर लेंगे। रानिया राजी कोई बात नहीं महाराज, आपका घर में पदार्पण हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, इसी में हमें संतोष हो जाएगा, हम पूजा करके अपने आप को कृतकृत करेंगे। गरुड़ को बुलाया गया, गरुड़ पर सुदामा जी को विराजमान किया, सुदामा जी बैठे चल दिए। एक रानी के महल में रुक्मिणी के जो पहुंचे, तो एक महल में पहुंचते ही सभी रानियों के महलों में अनंत रूप भगवान थे, इतने सुदामा जी के रूप बना दिए उन्होंने, और प्रत्येक रानी के महल में आराम से पहुंच गए। सभी रानियों को यही है कि हमारे घर में सुदामा जी पधार चुके हैं, अपार हर्ष हो रहा है। वहां वे अपने विधि विधान के अनुसार उनके चरणों की पूजा करती है, उनको और चंदन चढ़ाती है, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करती है, पुष्पमाला अर्पण करती है, पुष्प वर्षा करती है और चरण धोती है, इस प्रकार चरणों का पूजन करती है, चरणों पर फूल अर्पण किए जा रहे हैं, ऐसे प्रसाद उनको अर्पण करते हैं। इस प्रकार जैसी जैसी जिनकी भावना, सभी रानी सुदामा जी की सेवा करती है, भरपेट दपौ सेवा कर ली, क्योंकि अब उतावले तो कोई है नहीं कहीं जाना ना, एक ही क्षण में सब जगह उनको पहुंचा दिया। भगवान जैसे एक अंतर्यामी, नारद जी जब देखने के लिए गए तो प्रत्येक घर में भगवान की उपस्थिति मिली, कोई ऐसा घर नहीं जहां पर भगवान नहीं हो, इसलिए वो भी आश्चर्यचकित हो गए। तो वहां पर भी सुदामा जी को इस स्थिति में बना दिया, सबको संतोष हुआ, सबने स्तुति की वंदन किया और उनका आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद देने के बाद सुदामा जी वापस गरुड़ पर बैठे बैठे ही भगवान के पास में आ गए। आगे सुदामा जी, हाँ महाराज आपकी कृपा से आगे आ तो स्वस्थ। अब वापस पहुंच गए सुदामा जी, लौटने की बारी आई। अगले दिन तीन चार दिन हो गए रहते रहते, अब प्रतिदिन ब्राह्मण का स्वभाव है स्नान करना, अगले दिन भी उन्होंने प्रभात काल में स्नान किया, तो आज बारी में वही पुराने वाले कपड़े पहनने की बारी आ गई उनकी। नए नए कपड़े तो पहले थे, उस दौड़े में सुखा सुखो दिए, आज वही पुरानी धोती वो गमचाप में पहन पहना करके तैयार हो गए। ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी, जल्दी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने सेवा पूज्य कर ली। पूजा से निवृत्त होने के बाद अब वे वहां से प्रेम पूर्वक प्रभु के पास जाकर के विनती करने लगे, प्रभु अब आज्ञा हो जाए, अब मैं जाऊं। देखो बड़ा लोग ने कोई जाने पूछना पड़े नहीं, ना मतलब है कुछ न कुछ लेने की इच्छा है। साधु सोई जानिए छाने से रम जाए, पूछताछ आज्ञा लेवे तो है लेने की चाहे, कुछ लेने की चाहे मतलब कुछ देना तो दे दो, भेंट पूजा करनी कर दो, अब मैं जा रहा हूं। साधु तो वो एक चुपके से जल्दी अंदर अंदर रवाना जा, कोई खबर ही नहीं करे। अब सुदामा जी मन में तो लेने की थी, कुछ न कुछ भगवान देंगे, परंतु भगवान श्याम सुंदर सुदामा के पास बैठ गए और का जाने की बात कही। आत्म विदय के समय तिलक किया जाता है ना मित्र को, भगवान ने हाथ में ताशक लीवी कुमकुम चावल लिए, ललाट पर तिलक करने लगे, जो ही हाथ ऊपर बढ़ाया तो भाग्य में भाग्य की रेखा को पढ़ा भगवान ने, क्या लिखा है भाग्य की रेखा में लिखा था श्री क्षय। श्री क्षय का मतलब लक्ष्मी नहीं टिकेगी इनके पास, ये भाग्य रेखा है, इनके पास में लक्ष्मी टिकेगी नहीं, ये भाग्य रेखा में लेख लिखा था। भगवान का मेरे पास आ गया फिर भी क्या यही लेख रहेगा। उन्होंने अंगूठा लगा करके जो तिलक किया, तिलक उल्टा घुमा दिया, बटन घुमावे नहीं, जैसे उल्टा बटन घुमा दिया पंखे का बटन, उसी बटन से पंखा चालू होता है, उसी बटन से पंखा बंद हो जाता है, रेगुलेटर में घुमाओ अब चालू। ऐसे भगवान ने भाग की रेखा का बटन घुमा दिया तो वो तीनों अक्षर सीख स या थे, तो जो आखिरी अक्षर था वो सबसे पहले आ गया, आखिरी अक्षर पहले आ गया और पहला अक्षर हो गया आखिरी में, तो अब क्या नाम बन गया, अब बना है यक्ष श्री। श्री जो पहले था वो तो आखिरी में, और ये जो था आखिरी में वो आ गया पहले, तो क्षय बीच का बीच में ही रहा, तो यक्ष श्री उन कुबेर के समान धनवान होगा अभी। ये उन्होंने भाग्य की रेखा तीन अक्षरों को बदल करके ये काम किया, लेकिन सुदामा को बताया नहीं। ये अंगूठा क्यों घुमाया भगवान ने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया कि सुदामा जी ने अपनी गरीबी की बात भगवान को नहीं बताई, मैं ऐसा गरीब हूं, मैं मेरे बच्चे भूखे हैं और परिवार में हम बड़ी मुश्किल से समय निकालते हैं, ये भगवान के सामने इतने दिन रहकर कभी नहीं बताई, बताई नहीं, बात की नहीं, की नहीं, कभी नहीं की। भगवान के तुम ऐसे हो तो नहीं बताते, तो मैं तुम्हारे से गया गुजरा तो मैं करूंगा, तुम्हें बताऊंगा, तुम अपनी बात छुपाओ मैं अपनी बात छुपाऊंगा। ये तो आजकल के दानवीर होते हैं, जो दिखाते ज्यादा है करते कम है, पेम्पलेट में ज्यादा दिखाएंगे, एडवर्टाइज ज्यादा करेंगे और उसके ऊपर खुद के ऊपर नेम प्लेट ज्यादा बड़ी लगाएंगे, ताकि जब तक वो चीज मौजूद रहे, हॉस्पिटल अमुक सेठ ने अमुक चीज ने अमुक चंजी ने बनाया, हॉस्पिटल है तब तक नाम रहना चाहिए, लेकिन जो देकर के नहीं बताते हैं वो कायम रहता है, ये देकर के नाम लिखा हुआ चीज नष्ट हो जाती है, वो टिकता नहीं है, हमारे लिए देने पर भी वो नहीं देने जैसे हो जाता है, आ तो आती। चलो इस प्रकार भगवान ने यक्षस्थी दी सुदामा जी को, सुदामा जी को और कह दिया कर मित्र अब की आओ तो भाभी नशा ते लाई जो, पाछो आओ नहीं अब की भाभी नशा ते लाई जो, फिर नू तो भी देवे हो क्या दियो, तो एक टक्को ही कोने इनके पाछो भाभी नाते लेना है जो, पर भाभी ने तो देवता जना तो भाभी आ जाती, पर खाली आ जाए कूण वापस भाभी भी देख के पहल के किया तो खाली हाथ आया, उठे देने लेना वाला कहीं कौन दिखे जो, कहने बात आई अगर कुछ न कुछ देते तो उस लोभ के कारण से भी वो आ जाती, मन में सोच रहे सुदामा जी, पर तो बोले नहीं, ये इतनी हिम्मत रखी जो मन की बात मन में छुपा करके रख ली, जी में मनमा मनोरथ हुई। अब वहां से सुदामा जी भगवान को प्रणाम करके रवाना हो गए, चल पड़े दरवाजे से बाहर निकले, पीछे मुड़ करके श्याम सुंदर जो साथ साथ चले आ रहे हैं उनको प्रणाम किया, कहा मित्र अब तुम जाओ मैं मेरे चला जाऊंगा। इस प्रकार सुदामा जी वहां से निकल जाते हैं। आए स्तिक्षय लेयके भाग्य पलट भगवान, लौटाए अति प्रीत सो यक्षस्त्री दे दान। सुदामा जी आगे चलते चलते मन में विचार कर रहे हैं, देखो देखो कितने धनवान हो गए, लेकिन भाई आदत वो छूटती नहीं है। आखिर में ग्वाला तो ग्वाला ही ठहरी आगनी, लूट लूट दे खेड़ो है आरो, लूट लूट मकन खेड़ो है गोपिया ने, केवल लेड़ो लेड़ो ही क्यों देड़ो तो ही कहीं कोनी है। पर ठीक ही जे मैंने नहीं दियो तो मैंने चिंता फिक्र से मुक्त करियो, और ज्यादा कोई चीज वस्तु पास में होती है तो चिंता फिक्र ज्यादा रहती है, इसकी रखवाली करो, ये करो वो करो, हर प्रकार से नाना प्रकार से देखभाल करनी पड़ती है, सुरक्षा की चिंता होती है, रखने की बढ़ाने की हर प्रकार से। लेकिन अब इन्होंने जो नहीं दिया तो मेरे लिए बहुत बढ़िया काम किया है। अब हरि से निर्मोह इन देख कहूं एक और सुअंग कहूं न भये, जब गोपिन को तज के मथुरा अक्रूर के संग गए पे गए। पय पाए बड़ो नंद रानी की हो, भय कंस के नंद बचाए हले, प्रभु और सहज कहा कर है जिन हेत किए तिनके न भये। जिन्होंने इनके साथ में प्रेम किया भगवान तो उनके भी नहीं हुए, तो कहा दूसरों के होने वाले में इनके लगता भी क्या था। घर घर जो ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि के राज समाज। आदत तो पुराने वाली है वही रह के भाई बारह कोष में बोली पलटे, फल पाटे फल पाके पाका, फल पलटे पाका और उम्र लगा केश पलटे पर लखन पलटे लाख, ये सब समय समय में बदलते हैं, लेकिन लक्षण है आदत वो कितने उपाय कर लो बदलने वाली नहीं होती है। बारह कोष में आवाज भाषा बदल जाएगी और फल पेड़ पर फल है पकने पर वो अलग हो दूसरे हो जाएंगे, पहले हरा है तो बाद में पीले पड़ जाते हैं, आम देख लो। उम्र आते आते केश भी काले से सफेद हो जाते हैं, परंतु तो लक्षण तो हमेशा जो पहले हो गए। तो इसलिए शुरुआत में आज मंगल मतलब पहले बचपन की उम्र को मंगलमय बनाना चाहिए, ये सार चीज उत्तम है कि बचपन में अच्छे लक्षण आ जाएंगे तो पूरा जीवन मंगलमय रहेगा, उसके बिना जीवन में कहीं शांति की प्राप्ति नहीं होगी। चलो ठीक ही है, ऐसे वो सुदामा जी तरह तरह के विचार करते करते आपने वापस घर की तरफ लौट चले। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते खाली हाथ जैसे गए उसी प्रकार वापस लौट करके आ रहे हैं। अपने नगरी के पास में अपने कुटिया के पास में जो मार्ग आ रहा था उसी मार्ग पर बढ़ते 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 आने लगे। आगे देखा तो एक बहुत बड़ी हवेली बनी हुई है, बहुत बड़ी हवेली, सात खंड की, महल जाली झरोखा नाना प्रकार के, चारों तरफ बड़ी सुहावनी उसकी आकृति, बहुत सी कारीगरी की हुई उसमें जाली झरोखों की स्थिति बनी हुई है। देख करके सुदामा जी के देखा रे ये मेरी कुटिया की जगह तो आ गई, देखो इस मार्ग से मैं वन में जाता था, ये नीम का पेड़ है पीपल का पेड़ है तुलसी का पौधा है, यहाँ आके मैं हाथ धोता था, यहाँ पर धूप में विश्राम करता या दातुन करता था, ये मार्ग वही है, भूल के मैं कोई दूसरी जगह तो गया नहीं, परंतु मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई, कुटिया कहाँ गई, लगता है कोई राजा ने मेरी झोपड़ी को बर्बाद कर दिया, मैं यहाँ था नहीं, पीछे से उस राजा ने मेरी झोपड़ी को बर्बाद कर दिया और मेरे बाल बच्चों को भी भगा भगू करके सब उनको बेचारों को कहीं नष्ट भ्रष्ट कर दिया। राजा ने अपना नया महल बना लिया, अब उनके चक्कर में आकर के मेरी औरत के बातों में आकर के मैंने देखो एक तो अपनी झोपड़ी गमाई, औरत गमाई, बाल बच्चे गमाए और इस गांव में रहना गमाया, अब मैं यहां थोड़े रह सकूंगा। गजब हुआ, काम तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन बीत हो गई बात, अब करें तो करें क्या, किससे शिकायत करें, वाह द्वारकानाथ करी तो जबर करी मानो, ऐसे विचार करके चिंता में जिनका माथा चकरा रहा है बेचारे, पेड़ की छाया में बैठ गए थोड़ी देर के लिए, ज्यादा घबराहट होती है तो और क्या करे, ठंडी छाया में थोड़ो हवा खा लो, कुछ न ज्यादा आ रही हो घबराहट कम करने के लिए। सुदामा जी वहां पेड़ के नीचे बैठे हैं, महल में जो उनकी पत्नी सुशीला थी, रानी के समान जिस गहने कपड़े पहने हुए हैं, वो सुशीला महल में खड़ी हुई जाली में से उसने देखा कि झरोके में से पतिदेव आ गए। ओहो पंडित जी आ गए आ गए। उसने अपने दासियों से कहा तुम हमारे पतिदेव के स्वागत की तैयारी करो, पूजा की तैयारी करो, इनको बधावा करके अब महल में बुलाना है। एक दासी से कहा तुम जाओ, मैं यहाँ पूजन की तैयारी कर रही हूँ, तुम उन्हें बुला करके महल में लेकर के आओ। इस तरह वो दासी भी नाम की दासी परंतु गहने कपड़े रानी से कम नहीं, श्रृंगार कोई कम नहीं, सुंदरता भी कम नहीं, इस प्रकार की वो रुनझुन करती हुई और श्रृंगार से सजी हुई सुंदर गहने कपड़े पहनी हुई दासी सुदामा जी के पास जाने लगी। सुदामा जी ने उस औरत को आते हुए देखा, सोचने लगे कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो अब ये मुझे यहाँ से धक्का दे के निकालने के लिए आ रही है, यहाँ के मकान मालिक ने इसे कहा होगा कि इसे बाहर भगा दो, ऐसा फकीर यहाँ क्या काम कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, जल्दी नहीं जाए तो डंडे मार के भगाओ, इसलिए वो मेरे पास आ रही है, अब जल्दी यहाँ से उठ के भाग जाने में भलाई है, मैं लड़े तो कर सकता नहीं। हे परमात्मा, हे द्वारकाधीश, बारंबार आपको प्रणाम है, ऐसा कह करके अपना वो दंड कमंडल उठाने लगे। इतने में तो वो दासी उनके पास पहुंच गई, उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगी है कि महाराज पंडित जी महाराज हमारी मालकिन आपको बुला रही है, आप महल में पधारो, महल में पधारो। अब जो ही ये बात सुनी सुदामा जी ने देखा अब इनकी मालकिन की पहचान मेरे से तो है नहीं, और वो मुझे क्यों बुला रही है, शायद कोई उसको गर्ज होगी तो मैं पहले अपनी बात इनको बता दूं, बाद में पोल खुल जाए उससे पहले अपनी आपकी सही स्थिति कह देना ठीक है। सुदामा जी कहने लगे भूख सतायो गयो यदु भूप पवे, भूख गई नहीं नारी गवाई। अब रानी बोलाये कहा कहिए हम पंडित ज्योतिष वैद नाही, जाय कहो अपनी ठकुराइन ते अब छीनन पे हम पे कचुनाही, भूल भई यदु भूप वे जात कहूं फिर जाऊं तो राम दुहाई। वो कहने लगे मैं भूखे मरते मरते मैं यदु राजा के पास द्वारका चला गया, अरे मेरी भूख तो मिटी नहीं परंतु लुगई जरूर गमा बैठा, मैं औरत गमा बैठा, ये तो परिणाम जरूर हुआ है, टापर गमा बैठा औरत को गमा बैठा, अब तुम्हारी मालकिन मुझे अपने महल में बुला रही है तो क्या कहेगी वो मुझे बुला के, क्या मेरे से कुछ चीज कोई काम चाहती है, यदि कोई कथा कराना चाहती है तो कह दो कि मैं पंडित नहीं, यदि मुझे वैद्य समझ करके कोई इलाज कराने के बुला रही है तो कह दो मैं नाड़ी वैद्य भी नहीं हूं, और कोई जन्मपत्री दिखानी चाहती है कुंडली दिखानी चाहती है तो कह दो मैं ज्योतिषी नहीं, अब बुला करके करेगी क्या मुझे वहां पर, ना बाबा मैं तो यही हूं, अपने मालकिन से मेरे ये समाचार कह दो और जाकर के कहो कि मेरे को यदि तुम यहां से इस तरह तुम भगाना चाहते हो, तुम यहां क्यों आए, इस बात के लिए दंड देना चाहते हो, तुम यहां आए तो आए क्यों, यदि केवल इसीलिए दंड देना है तो ऐसा करो, देख लो मेरे पास में फटी पुराने दुपट्टी के सिवाय लेने के लिए और कोई भी चीज नहीं है, याद रख लेना, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, और कोई रुपये पैसे के समझ करके इसे कुछ छीन लो झपट लो वो भी नहीं मिलेगा, बाबा हाथ जोड़ करके कहता हूं जाके समाचार अपने मालकिन से कह दो और मुझे अंदर बुलाने ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार वो बेचारे पंडित जी वापस बैठे, काफी देर उनको बातें करने में लग गई, आरती पूजा की तैयारी हो गई तो सभी सखियों के साथ में सुदामा जी की पत्नी पूजा का थाल लेकर के वहां सामने झुंड के झुंड सखियों के साथ में महल के दरवाजे से निकल करके सुदामा जी के पास में आ गई। अब तो सुदामा जी की छाती धड़कने लगी, लोग मैं नहीं अंदर नहीं गया तो वो यहां आ गई हमारी की। इतनी औरतों को लेके आई कि कहीं भाग नहीं जाऊं, अब तो आज जरूर पिटाई होने वाली है। बुढ़ा आदमी भाग के जाऊं तो कहां जाऊं, कैसे जाऊं इनके सामने। हे परमात्मा, आज मेरे में कैसे बीती रे, आज मेरी कैसे क्या दुर्दशा होगी रे, अब मेरी इस दुर्दशा से कौन रक्षा करेगा। इस प्रकार वे मन ही मन बड़े दुखी हो गए। आंखें बंद करके श्याम, क्योंकि दुख के समय भगवान का याद नाम याद आता है, श्याम सुंदर को याद किया, क्योंकि वहां भी दुख भोजन के टाइम और जो स्नान के टाइम दुख पड़ा था उसमें भगवान को याद किया, दुख निवारण हुआ। इस तरह यहां पर भी ये दुख अपार आ गया कि आज पिटाई होगी तो कैसे बचाओ, हो तो भगवान का चिंतन किया। इतने में सुशीला ने आकर के प्रणाम किया, आर्य पुत्र को दासी का प्रणाम हो, दासी का प्रणाम स्वीकार करें पतिदेव। गले की आवाज पहचानी, ओहो ये आवाज तो मेरी परिचित, मेरी स्त्री की है, लेकिन इतने गहने कपड़े, इतने ठाटबाट इसके पास में कहां से कैसे क्या, ये समझ में नहीं आया, इसलिए भ्रम पड़ गया। वही फटे पुराने कपड़े, वही लहंगा फटा होता और वैसे ही फटे लीरे ओढ़ना होता तो पहचान जाते, लेकिन कपड़े इस प्रकार एक राज रानी के होने चाहिए, बड़े बेशकीमती कपड़े पहने हुए, वो गहना अपार जो सोने से लदी है, लथपथ हुई है, पहचान नहीं पाए। आवाज सुनकर के थोड़ा धैर्य हुआ और पूछा, क्यों गृह स्वामिनी? हाँ महाराज, मैं आपकी दासी हूं सुशीला। सुदामा जी की बोली बंद हो गई, तू इतने गहने कपड़े कहां से लेकर के आई है, बता तो सही। ए महाराज, मैं नहीं लाई हूं, आप लेके आए हो। अरे मैं तो फकीर जैसा गया वैसा आया हूं, मैं कहां लेके आया हूं। देखिए महाराज, ये आप नहीं जाते हैं तो ये कुछ नहीं मिलता। जिस दिन आप यहां से रवाना हुए उस रात में ही तो ये महल तैयार हो गया। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश देकर के हाथों हाथ संकल्प के द्वारा जैसे कोई रचना की जाए, इसी प्रकार इस महल की रचना करा दी उन्होंने, संकल्प के रूप में प्रकट रचना करा दी। द्वारका से भी बढ़ करके इस सुदामापुरी की रचना कर डाली, उस रात में सब रचना हुई महल की। और उसके दो दिन बाद में पूरे महल में इतनी सामग्री आई है महाराज, इतनी सामग्री आई कि रखने की जगह नहीं है। इतना बड़ा महल है, अनेक गोदाम भय, परंतु रखने के लिए जगह नहीं है। यहां सामग्री की संख्या क्या बताऊं, ये जो मेरे साथ में सखियां चल रही है ना, इनकी संख्या कितनी है बताऊं, बोलो। 16,108 ये संख्या भगवान के रानियों की। अरे रे रे, ये तो भगवान के दासी, वहां पर उनकी संख्या है और क्या है। इसी संख्या के हिसाब से घर में सब सामग्री है महाराज। इतनी तो गौवे हैं, इतने ही घोड़े हैं, इतने ही रथ हैं, इतने ही हाथी हैं, घर में अनाप शनाप गोदाम है, अनाज के भरे हुए हैं, थाली लोटा बर्तन जूते चप्पल खड़ाऊ छत्ता और कपड़े, नई प्रकार के मान लो कोई बड़ी भारी मील हो, इस प्रकार ढेर ढेर कपड़े मील भरे हुए महाराज। इतनी सामग्री, ये सब कैसे हुआ कि जो ही वहां सुदामा जी गए थे जिनके घरों में, रानियों के घरों में गए, रानियों ने पूजा की, पूजा के साथ में जैसे कोई चीज भेंट दी जाती है, उन्होंने कहा कि यदि यहां देंगे तो ले जा कैसे सकेंगे इतनी सामग्री को, ये ले जाने में इनको तकलीफ पड़ेगी, कोई गए इतने कहां से लेकर आया है, कैसे करेगा, चोरी की है, लूट किया, खसोट किया, इसको तंग करेंगे, इसलिए इनको बताओ मत, चुपचाप यहां से संकल्प करके सीधा ही सुदामा जी के घर पर पहुंचा दिया सारा सामान। सभी रानी ने पूजा की, बराबर सबने सामग्री इनको भेंट की, लेकिन बताया किसने कुछ नहीं। भगवान ने श्याम सुंदर देव नहीं बताया तो रानी क्या कम रहेंगी, वो कैसे बताएंगी, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। और इस प्रकार अतुल वैभव वहां सुदामा जी की सुदामापुरी में ठाट बाट कर दिया चारों तरफ। ये संख्या देखी, सुदामा जी पूजन करके जब अंदर लेकर के गए, सुदामा जी जो ही कदम बढ़ाते हैं प्रभु का चिंतन करते हैं, हे द्वारकाधीश भगवान, हे जगन्नाथ, हे जगदीश्वर, हे प्रभु आपके चरणों में मेरा बार बार नमस्कार हो। मुझे तो गरीबी हालत में रखते तो ही बढ़िया था, इतना वैभव तो आपके लिए ठीक होता है, मेरे लिए इतना वैभव किस काम का, मैं कहीं इसमें उलझ नहीं जाऊं, इसलिए कृपा करो। वे घर में रह करके भी कभी भी संपत्ति के चक्कर में मोह में नहीं पड़े और जो भगवान को अर्पित कर देते हैं, जो कुछ आपका दिया हुआ है, त्वदिम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पिय, आपका दी हुई सामग्री आपको ही अर्पण है, इस प्रकार वे प्रभु को ही अर्पित कर देते हैं, उनको समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार तो अब सारी देखभाल भी परमात्मा के हाथ में और मालिक भी परमात्मा, अपना कुछ भी बिगड़ता नहीं और किसी प्रकार से कोई हमारे पास में वे रहने देते नहीं। तो ये बात है कि निज तोटो दुख दर्द जब कयो सुदामा नाय, अतुल संपदा दान को राख्यो श्याम छुपाए। जब सुदामा जी ने अपने तोटे की बात, घाटे की बात, दुख और दर्द की बात भगवान को नहीं बताई, तो भगवान श्याम सुंदर ने भी जो दिया वो सुदामा को नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं बताया। अरे दान भी दो तो ऐसे दो, अपने इस हाथ से दिया, इस हाथ को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए, तभी वो फलीभूत होता है, वो सार्थक होता है, कि उसी का लाभ ज्यादा होता है। अरे मालूम है कि नहीं, और कुकर को जमाना, कुकर जो बढ़ाओ जो काम ले, चाहे कोई चीज सीजाओ जब, तो कुकर में से यदि गैस लीक हो जावे तो कुकर बेकार हो जावे, और गैस अंदर रुकी रहेगी तो चीज बनेगी, हाथों हाथ तैयार हो जाएगी। तो ये अपने मुख से कोई बात किसी को कह देना, ये गैस निकलने के समान अपने आप को कमजोर कर देने जैसी होती चीज। इसलिए जो करना है वो मुक्त भाव से करो और लेकर के उसको बताने की डिंडोरा मत पीटो, सुनाओ मत लोगों को, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर देता हूं, ऐसा कर दो। अरे कहीं तो करेंगे नहीं, पहले सुना देंगे, बाद में करेंगे नहीं, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन पहले सुना देंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। लोग के हो ऐसे करने के नहीं मालूम कितने कितने ऊंचे, कितने ऊंचे हैं इस प्रकार के सज्जनों। अरे सुदामा जी के चरित्र के विषय में जो दयाल जी महाराज ने ये वर्णन लिखा है अपने वचनों के माध्यम से, अष्ट जामत दर्श प्रामत ज्ञान गामत अनुसरे उर्भीत मन अति प्रीत जादव जहां एकंत उन्नीसरे इम कर्त हर्ष दर्श पामत पेख के लज्जित भय हम कवन जानक कैसे वानक रहस्य आनक मन कहे वही विकल विकलत कंज उमगत रंज दिन कर पुल भय पले तब मधुर मीठे बैन उचित भेंट उर सज्जन मिले तब कहत प्रिय सब राज लोक बड़े भाई आविया तो सब चरित यादव कहत मुलकत भेंट हम का लाविया दुज कयो लज्जित कहन काबन छीन के तंदुल लोक संपत्ति न मुठ्ठी करद रचना उर दे परस परस रहे दिन दुई भेंट काहू ना करे हमें खेचत एन मेट भाग फूटे दुज हे इम सोच कर तब चले मार्ग आप थानक आविया रच बहल कंचन पुनरपुर नवीन देव चरित दिखाविया द्विज कहत प्रिय कहाँ कुटी मेरी भूपति धसवस करे इम कयो भयो दिन कर कवन मेरो कृष्ण विन इम कुण करे पट हीर चीरम जरी वासद राध का दर्शाव ही प्रिय कहत ओटे अटन जारी चरित हरि दर्शाव ही दिन दीन बंधु दीन सायक कर्ण अकर्ण जन करे पुनि अभय दानस दिए कायम हम अनाथस उद्धरे नित नमो जय जय अनत वंदन मुख कंद सुख कंदन माधवा मन पूर इच्छा करण अकरण जा गाय जुग जुग साधवा युग युग पर्यंत संत महात्मा ऐसे प्रभु के लीलाओं का जो भक्तों के लिए सदैव सेवा के लिए तैयार रहते हैं किस प्रकार वे सेवा करते हैं पता नहीं चलता ऐसे अद्भुत लीलादारी परमात्मा को हम बार बार वंदन करते हैं। और इस सुदामा चरित्र के प्रसंग के साथ में ही अभी का जो मध्याह्न का विश्राम काल देखते हुए लगभग आधे घंटे का विश्राम कर लेते हैं। राम 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 जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम
सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम 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 सीताराम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की मोर मुकुट बंसी वाले की पवन सुत हनुमान की राम गुरुदेव जी महाराज।